الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورۃ المعارج کی ترجمہ تفسیر وغیرہ پڑھ رہے ہیں. ہمارا جو سٹائل ہوتا ہے تفسیر کی کلاس میں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ تو ہم معارف القرآن سے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو نا سمجھ لیں سیڑھی کے طور پر یا ایکسکیوز کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اوور آل دین کے بارے میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو صرف جو قرآن کے آیات ہیں, صرف ان کا ترجمہ نہیں, صرف ان کی تفسیر جیسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے ویسے نہیں, بلکہ اس کے تحت جتنے بھی مسائل وغیرہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے, جتنے بھی موضوعات جو کہ ہمارے دین و دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جن میں ہمیں قرآن کی گائیڈنس اور دین کی گائیڈنس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, جو جو چیز بھی ذہن میں آتی ہے وہ وہ چیز پھر ہم اس کلاس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے نا ایک سکوپ ویسے تو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ جی معارف القرآن پڑھیں گے, لیکن ان ادر ایک اور طریقے سے دیکھا جائے تو ہمارا سکوپ جو ہے وہ انلمیٹیڈ ہے. ٹھیک ہے, اس میں سب چیز ہی شامل ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس کلاس کے اندر میں کوئی ہر چیز کی پہلے سے تیاری کر کے نہیں آتا, ہر چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی کہ اب آپ کو یہ بتانا ہے, اب آپ کو یہ بتانا ہے. کچھ چیزیں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں جب مطالعہ کرنے کے دوران جو ذہن میں آتی ہیں تو وہ تھوڑا سا لکھ بھی لیتے ہیں پوائنٹ وائز یا کوئی ورڈ اس کے بارے میں لکھ لیتے ہیں تاکہ کلاس کے اندر اس کو ڈسکس کر سکیں, لیکن بہت ساری ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ڈیورنگ کلاس ذہن میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, کلاس کے اندر ہی آپ کو بتانے کے دوران ہی کوئی بات ذہن میں آتی ہے تو اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں, یا یہ کہ آپ کی طرف سے کوئی سوال آتا ہے تو اس سوال کے اوپر پھر بات شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ پہلے سے ہم نے سوچا ہوا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ انکریج بھی کیا جاتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں اس کلاس کے اندر. ٹھیک ہے, سوال پوچھنے سے نہ صرف یہ کہ پوچھنے والے کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ بتانے والے کا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ بتانے والے جب بتائے گا تو اس کو بھی تو اس کا اجر کا حصہ ملے گا نا, اور باقی جو سننے والے ہوتے ہیں تو ان سب کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے سوال پوچھنا چاہیے اگر ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے. بے شک آپ ہر ایک کو وہ سوال لکھ کر کے نہ بھیجیں چیٹ ونڈو میں, ٹو ایوری ون کر کے نہ بھیجیں, بلکہ پرائیویٹلی جو ہے وہ ٹیچر کو بھیج دیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ باقی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ نہ دیکھیں کہ کس نے سوال کیا ہے والا, تو آپ پرائیویٹ میسج کر دیں. ٹھیک ہے, تو لیکن سوال کو روک کے نہ رکھیں اپنے پاس, بلکہ پوچھ لیا کریں. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب چلیں ایک دو چیزیں اگر ہم آپ سے پہلے پوچھ لیں کوئز کے طور پر, انفارمل کوئز, ظاہر ہے اس کے اندر کوئی مارکنگ وغیرہ نہیں ہوتی ہے, تو کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو سورۃ المعارج ہے تو لفظ معارج سے مراد کیا ہے اس صورت میں؟ معارج کا لفظ کس چیز کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ दी सीढ़ियां। तर्जुमा तो इसका सीढ़ियों से बनता है, लेकिन इस सूरत में जिल मआरिज, जिल मआरिज किसको कहते हैं? जिल मआरिज है ना, मिन अल्लाह जिल मआरिज, दर्जे। अच्छा, दर्जे, सीढ़ियां, बुलंदी, ठीक है। ये सब बुलंदी तो एक्चुअली नहीं कहेंगे, लेकिन सीढ़ियां और दर्जे ठीक है। लेकिन इस सूरत में ये खास किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। सीढ़ियों से मुराद कौन सी वाली सीढ़ियां? क्या दुनिया की हर सीढ़ी मुराद है यहाँ पर? क्या स्कूल के अंदर जो दर्जे होते हैं वो भी मुराद है यहाँ पर? कौन से खास दर्जे मुराद है, कौन सी खास सीढ़ियां मुराद है? मिनल्लाहि ज़िल मआरिज, अल्लाह जो के मआरिज वाला है, मआरिज का मालिक है। जी बिल्कुल सही, आसमान, सात आसमान मुराद है यहाँ पर। ठीक है, तो अल्लाह ताला सात आसमानों वाला है, यानी उनका मालिक है। अच्छा, दूसरा सवाल कि ये जो छठी आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहुम यरौनहु बईदौ व नराहु करीबा, ठीक है, कि ये लोग देखते हैं उसको दूर जबकि हम देखते हैं उसको करीब। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कयामत की बात हो रही है, राइट। दुनिया वाले जो काफिर हैं वो इसको बड़ी बईद चीज के तौर पर देखते हैं, और बईद से यहाँ पर मुराद ये नहीं कि हजारों साल बाद कयामत वाकई होगी, बल्कि ये लोग कयामत को वुकू के काबिल ही नहीं समझते कि ये होगी ही नहीं। बईद का मतलब यहाँ पर ये है कि ये होने ही वाली नहीं है। ठीक है, तो ये लोग कयामत को ना बहुत दूर की चीज समझते हैं, जबकि हम इसको बड़ी करीब की चीज समझते हैं। अल्लाह ताला अपनी बात कर रहे हैं कि हम इसको करीब की चीज समझते हैं। तो किसी को याद है कि यहाँ पर अल्लाह ताला के बारे में हमने एक बात बताई थी कि अल्लाह ताला को हर चीज करीब कैसे नजर आती है, हर चीज करीब कैसे अल्लाह ताला के लिए? यहाँ पर अल्लाह ताला की एक शान बयान करी थी, किसी को याद है कि वो कौन सी वाली शान थी? कैसे अल्लाह ताला को हर चीज करीब नजर आती है, किस वजह से? अल्लाह ताला की तख्लीक के बारे में एक बात करी थी, अल्लाह के आगे जमाने की हैसियत नहीं है। हाँ ठीक है, आप सही पॉइंट पे पहुंच गई हैं। तो माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला के सामने जमाने की हैसियत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जमाना, वक्त, ये भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है, राइट। ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, तो अल्लाह ताला अपनी मखलूकात को जैसे चाहे फिरा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ना हर जमाना अल्लाह ताला के सामने वैसे ही है कि जैसे कि हमारे सामने हमारा जमाना होता है। ठीक है, जैसे हम अपने जमाने को देखते हैं ना, अल्लाह ताला हर जमाने को वैसे ही देखते हैं जैसे कोई इंसान अपने जमाने को देखता है खाली, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की मखलूक ही है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। इसके आगे कोई बता सकता है कि लज़ा, लज़ा क्या चीज़ होती है? और इसके बारे में हमने थोड़ी सी आपको तफसील बताई थी, वो तफसील किसी को याद है? लज़ा आयत नंबर 15 के अंदर, इन्नहा लज़ा, तो लगा क्या चीज होती है? हाँ, लजा फिर किसी को याद है? शोला बगैर आमेजश के। चलिए, ये तो जो तर्जुमे में लिखा हुआ है इस तरीके से, या तफसीर में लिखा हुआ है, लेकिन हमने आपको क्या बताया था इसके बारे में तफसील? शोला, शोले को कहते हैं लगा, ठीक है, लेकिन बगैर आमेजश के, ये भी लिखा हुआ है इसके साथ साथ। तो इसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने बयान करी थी, और ख्वातीन को तो मुशाहिदा भी होता रहता है इसका, तो आसान होना चाहिए आपके लिए इसका जवाब देना। घटा टूप अंधेरा, खींचना, नहीं, खींचना तो नजाह का तर्जुमा होता है, नजातन, जैसे हालत नजा में जब कोई शख्स होता है तो उस वक्त फरिश्ते उसकी रूह को खींच रहे होते हैं उसके अंदर से। तो नजा का मतलब होता है खींचना, लजा के बारे में क्या बताया था, शोले का जो हिस्सा नजर नहीं आता वो सबसे गर्म होता है। जी माशाल्लाह, ठीक है, यही बताया था। इससे थोड़ी सी और तफसील भी थी, ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले से मुराद जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है शोले का, ठीक है, ये यहाँ पर मुराद है, ठीक है, क्योंकि वो जो हिस्सा होता है ना फ्लेम का या शोले का, वो हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है और इसके अंदर रोशनी नहीं होती। क्योंकि उसके अंदर रोशनी नहीं होती, इसी वजह से वो हमें नजर भी नहीं आता, ठीक है। तो जहन्नुम में जो आग होगी ना, वो ये वाली आग होगी, यानी शोले का सिर्फ वो वाला हिस्सा होगा जहन्नुम में जो सबसे ज्यादा गर्म होता है और जिसके अंदर लाइट प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, रोशनी नहीं होती उसके अंदर। इसी वजह से जहन्नुम के अंदर आग होगी लेकिन रोशनी नहीं होगी। इस दुनिया के अंदर जब आग जलती है तो उस आग की वजह से खाली गर्मी प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि रोशनी भी प्रोड्यूस होती है, राइट। क्यों रोशनी प्रोड्यूस होती है इस दुनिया की आग आग से, इसकी भी वजह बताई थी ना, इस दुनिया की आग में रोशनी कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी क्या वजह थी कि दुनिया की आग का जो शोला होता है उसमें सिर्फ बाहर वाला हिस्सा नहीं होता बल्कि एक और हिस्सा होता है। वो कौन सा वाला हिस्सा होता है जिसे रोशनी प्रोड्यूस होती है दुनिया के शोले में, याद है किसी को? येलो वाला हिस्सा, ठीक है। माशाल्लाह, लिख लिया करें थोड़े थोड़े से अल्फाज को तो जवाब देना आसान होगा। हम आपसे ये कोई थोड़ी कह रहे हैं कि आप अपनी किताबों को बंद कर दें, ये तो ओपन बुक क्विज है ना। तो जिसने लिखा होगा छोटे छोटे पॉइंट्स, तो वो फिर ना सिर्फ ये कि उसको याद भी रहेगा खुद ही, और बल्कि अगर कोई इस किस्म का क्विज हुआ तो उसमें जवाब भी दे सकेंगे। तो जो येलो पार्ट होता है शोले का, ये येलो पार्ट रोशनी प्रोड्यूस करता है और ये गर्म ज्यादा नहीं होता, ये मीडियम दर्जे की गर्मी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो जहन्नुम की आग के अंदर ये येलो वाला हिस्सा नहीं होगा तो रोशनी भी प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। इसके आगे इन्नल इंसाना, अच्छा एक मिनट, इन्हा लगा यानी जहन्नुम की आग जो है वो लजा होगी, इस तरह की आग होगी। नज़ाअतल लिश्शवा, वो खाल खींचने वाली वाली तकलीफ देगी, और या कलेजा जो है वो बाहर निकाल देगी ये वाली आग। तो दोनों तर्जुमे किए। तदउ मन अदबरा वतवल्ला, ये आग पुकारती है जिसने उसको जिसने पीठ फेर ली और फेर कर चला गया, ठीक है। कोई किसी किस्म की पुकारने वाली सलाहियत इस आग के अंदर होगी, आवाजें या तो आ रही होंगी इस आग से, जहन्नुमियों को बुलाया जा रहा होगा। अच्छा, व जमा फाउआ, के ये जो जहन्नुमी लोग हैं इन्होंने माल को जमा किया होगा और उसको सेंत सेंत करके रखा भी होगा। इसके तहत फिर हमने कुछ बात करी थी बुखल के बारे में, कि ये जो बखील इंसान होता है ये अपने माल को पहले तो बहुत मेहनत कर करके कमाता है, चाहे वो हलाल तरीके से कमाए चाहे वो लूट खसूट करके जमा करे माल को, ठीक है। बहरहाल बखील आदमी जो है वो माल जमा करता है। अब इसमें जमा करने का तरीका मुराद नहीं है, हलाल तरीके से भी जमा कर सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने आप को खपाता है, ठीक है। दिन रात जो है वो सुबह को जो है वो दफ्तर जाता है, शाम को जो है वो दुकान में बैठता है, फिर रात को जो है वो अपने बिजनेस के मंसूबे बनाता है, ठीक है। तो इतनी मेहनत कर करके माल को जमा करता है और फिर उसके बाद उसको उसको बचा बचा के रखता भी है। क्या मतलब? खर्च नहीं करता, इवन जो जरूरत के मौाक़े होते हैं वहां पर भी खर्च नहीं करता, ना अपनी जान के ऊपर खर्च करता है, ना अच्छे कपड़े पहनता है, ना अच्छे जो है वो घर में रहता है, ना अच्छे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को देखा कि बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, अच्छा कमा रहे होते हैं, लेकिन इंतहाई यानी छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे हैं, राइट, और यानी गंदे संदी जगह के ऊपर रह रहे हैं, हालांकि अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी जगह पर रहना। तो ये जो गंदे अपार्टमेंट में या छोटी सी जगह में जो रह रहे होते हैं, तो इसमें उनकी जिंदगी तो गुजर रही है ना भाई। आप माल जो जमा कर रहे हैं तो किस वक्त के लिए जमा कर रहे हैं? जब बूढ़े हो जाएंगे उस वक्त आप इस माल माल से फायदा उठाएंगे, राइट। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे उस वक्त इस माल से फायदा उठाएंगे, भाई माल से तो अभी फायदा उठाए ना, जिंदगी का तो पता नहीं है कि फ्यूचर में ये जिंदगी होगी कैसी होगी, कब होगी, होगी भी कि नहीं होगी, राइट। तो तो अभी की जिंदगी को क्यों खराब कर रहे हैं, अपनी भी और अपने बच्चों की जिंदगी भी। कम से कम इतना तो रहे ना कि जिसमें के आपकी अपनी जो जिंदगी है, अपने जो सेहत है और जो अपने जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो मुतासर ना हो। आप अपने बच्चों को पैसा होने के बावजूद, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन बच्चों को छोटे से अपार्टमेंट पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब बच्चों के खेलने कूदने के लिए जगह नहीं है, बच्चों के लिए जो है वो सही तरीके से रहने की जगह नहीं है, राइट। तो उनकी तो बचपन जो है वो तो तंगी में गुजर गया ना, उनका बचपन जो है वो तो इन तकलीफों के अंदर गुजर गया। तो क्यों, जब आपको अल्लाह ने दिया था तो उसको खर्च भी करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी फजूल खर्ची भी गुनाह है, लेकिन कंजूसी भी गुनाह है, ठीक है। फजूल खर्ची भी गुनाह है और कंजूसी भी गुनाह है। हमारा दीन जो है वो दरमियान का दर्जा सिखाता है ना, कि जरूरत के मौके के ऊपर अच्छे से खर्च किया जाए, ठीक है। तो ये भी चीजें होती हैं जिनके अंदर हम बहुत दीनदार होने के बावजूद बड़ी मेजर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा होता है। इसी वजह से ना ये सारी चीजें भी पूछने की होती हैं। कुछ लोग जो है ना अपने जिंदगी के इन पहलुओं को छुपा छुपा के रखते हैं, राइट। अगर किसी से इस्लाही ताल्लुक बनाया भी हो, पहली बात तो बनाते नहीं है, पूछते नहीं है, किसी से भी नहीं पूछते, लेकिन अगर इस्लाही ताल्लुक बना भी लिया होता है ना, तो इन बातों को नहीं पूछते, इनको छुपा छुपा करके रखते हैं, ठीक है। क्योंकि शेख साहब के सामने अगर आ गई ये बातें तो वो कहेंगे कि भाई खर्च करो अपने ऊपर, खर्च करो अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, और वो करना नहीं चाहते। तो इस वजह से ना वो बताती नहीं है इस तरह की बातें, ये बहुत गलत बात होती है, ठीक है। तो जिंदगी एक ही मरतबा मिली है भाई, दूसरी जिंदगी नहीं मिलेगी, राइट। इस दुनिया में दूसरी जिंदगी नहीं मिलेगी, बस यही एक जिंदगी है, इसी में आपने अच्छे से रहना है, इसी में आपने अल्लाह ताला की मर्जी को पूरा करना है। अगली जिंदगी में तो इसकी जजा मिलेगी, अगली जिंदगी में आमाल नहीं कर सकता कोई बंदा कि वहां पे जो है वो आराम से रह लेंगे, अगर इस दुनिया के अंदर बुरे अंदाज से रह लिए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये यानी दीन के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि किताबें पढ़ करके ना हमें समझ में नहीं आते, बल्कि उल्टा समझ लेते हैं कि सहाबा जो है वो बड़ी तंगी में रहा करते थे। अब तंगी में रहा करते तो उसका मतलब है कि हमने भी तंगी में रहना है। भाई सहाबा तंगी में रहते थे तो किसी वजह से रहते थे, हमारे ऊपर अगर वो वजह अप्लाई नहीं हो रही है तो हम अपने आप को उस तरह की तंगी में नहीं रख सकते हैं। हर सहाबी तंगी में नहीं रहता था। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सुना है, कभी वो तंगी में रहते थे, राइट। तो अगर हमारे हमें अल्लाह ताला ने दिया है तो हम जो है वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। उनके पास तो कुछ होता ही नहीं था, ना खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए कुछ था, ना पहनने के लिए उनके पास कुछ था। हमें तो अल्लाह ताला ने दिया है ना, ठीक है। ये बड़ी मेजर गलतियां होती हैं जिनसे बचने का खाली एक ही तरीका है कि हम इखलास के साथ अपने मशाइख से जो है वो गाइडेंस लेकर के जिंदगी गुजारें, ठीक है। ये बचा बचा करके रखना और ना खर्च करना, ना अपने ऊपर ना अपने रिश्तेदारों के ऊपर, ये गुनाह का काम होता है और इससे जो है ना इंसान को बहुत नुकसान हो रहा होता है। इसके बाद फरमाया इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली ये जो अवआ की तफसीर हम खुलासे तफसीर से पढ़ रहे थे, इसमें तीन ढाई लाइनें रहती थी पेज नंबर 552 के ऊपर। तो इसके बारे में फरमाते हैं ये कि जमा फ़ौआ से कुफार का मुकल्लफ बिल फुरू होना लाजिम नहीं आता। क्या मतलब है इस जुमले का कि अल्लाह ताला ने कुफार को सजा देने की एक वजह क्या बताई है यहाँ पर, कि ये माल को जमा 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 कर करके रखता था, ठीक है। तो इसके ऊपर हजरत लिख रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि काफिर जो है ना उससे उसके बुरे आमाल के ऊपर, यानी किसी काफिर के ऊपर अपने आमाल को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है, ठीक है। मतलब ये है कि काफिर के ऊपर जो जिम्मेदारी है ना, अल्लाह ताला की तरफ से जो डिमांड है काफिर के लिए, वो क्या है, ईमान लेकर के आना, ठीक है। काफिर ने ईमान लेकर के आना है, ये है उसकी जिम्मेदारी। जब वो ईमान लेकर के आता है ना, फिर उसके बाद उससे नेक आमाल की एक्सपेक्टेशन होती है, यानी अब वो मोमिन बन गया, अब उससे नेक आमाल की एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आपने माल को खर्च करना है अच्छी जगह के ऊपर, और आपने जो है वो यानी नसीहत की बात को सुनना है, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करनी, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि काफिर का मुकल्लफ बिल फुरू होना लाजमी नहीं आता कि काफिर जो है ये फुरुआत, फुरुआत क्या चीज होती है, फुरुआत का मतलब होता है ब्रांचेस, ठीक है। एक दरख्त को अगर आप थोड़ा तसव्वुर करें, ठीक है, तो दरख्त के अंदर ना दो मेजर हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है उसकी जड़ और जड़ से निकला हुआ जो तना होता है, ठीक है ना, जड़ और जड़ से निकला हुआ जो दरख्त का तना होता है जिसको के ट्रंक ऑफ द ट्री कहते हैं, ठीक है ना। ये जो हिस्सा है ना इसको कहेंगे दरख्त की असल, दरख्त की बुनियाद, ठीक है, असल और बुनियाद एक ही चीज है। अब ऊपर चले जाएं दरख्त के अंदर तो इस तने से फिर शाखें निकलती हैं, ठीक है, शाखें, राइट, ब्रांचेस जिनको कहते हैं। इन शाखों के लिए अरबी का लफ्ज क्या है, फुरुआत, फुरु या फुरुआत, ठीक है, ब्रांचेस को कहते हैं फुरुआत। तो दरख्त की स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको, क्लियर है कि एक तो असल होती है दरख्त की और दूसरी फुरुआत होती है दरख्त की। उसी तरीके से दीन के अंदर भी एक चीज होती है असल और दूसरी चीज होती है फुरुआत। तो दीन में असल क्या है, अगर आप लोग बताएं दीन में असल क्या चीज है, बुनियाद क्या चीज है, ईमान, बिल्कुल ठीक है। कोई और बताए कि दीन में फुरुआत क्या चीज है, कलमा तौहीद तो ईमान में शामिल हो गया ना, ईमान में सब कुछ शामिल हो गया, कलमा तौहीद भी हो गया, कलमा तैयबा भी हो गया, कलमा शहादत भी हो गया, और फरिश्तों पर ईमान, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, सब कुछ ईमान में शामिल हो गया, ठीक है। फुरुआत क्या चीज होती है दीन में, दीन में फुरुआत किन किन चीजों को कहते हैं जी, आमाल, राइट, जो आमाल करता है बंदा, ठीक है। तो नेक आमाल का दीन हुक्म देता है और बुरे आमाल से दीन मना करता है, ठीक है ना। ये है दीन की फुरुआत, ये है दीन की ब्रांचेस, ठीक है। तो यहां पर कहना ये चाह रहे हैं कि जो काफिर होता है ना उसके ऊपर तकलीफ अल्लाह ताला ने क्या डाली है, तकलीफ का मतलब होता है बोझ, अल्लाह ताला ने काफिर के ऊपर क्या बोझ डाला हुआ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक आमाल करना नहीं है, राइट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक आमाल करना नहीं है, बुरे आमाल से बचना नहीं है, बल्कि क्या है, ईमान लेकर के आना, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं कि क्योंकि इन रजाइल की वजह से, रजाइल कहते हैं बुरे अमाल को, ठीक है, तो इन रजाइल की वजह से कुफार को असल अजाब नहीं होगा, यानी कुफार को जो जहन्नुम में डाला जाएगा ना वो इनके बुरे अमाल की वजह से नहीं डाला जाएगा, बल्कि किस वजह से डाला जाएगा, कुफर की वजह से डाला जाएगा, ईमान के ना होने की वजह से डाला जाएगा जहन्नुम में, ठीक है। तो इनको जहन्नुम में बुरे आमाल की वजह से नहीं डाला जाएगा बल्कि कुफर की वजह से डाला जाएगा, ठीक है, बल्कि इश्तिदादे अजाब होगा। लेकिन मतलब क्या है इसका, कि जब उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा ना, अब जहन्नुम के अंदर जाने के बाद जहन्नुम की किस वादी में उनको रेजिडेंस दी जाएगी, जहन्नुम के कौन से वाले अजाब को इनके ऊपर डाला जाएगा, ये डिफरेंस जो है ना कि कौन सा अजाब किसको मिलेगा, कौन सा अजाब कौन सा वाले काफिर को मिलेगा, कौन सी वादी के अंदर किस काफिर को डाला जाएगा, किस में किसी दूसरे काफिर को डाला जाएगा, ये उनके बुरे अमाल की वजह से होगा, ठीक है। तो नफ्स अजाब कुफर पर होगा, यानी जहन्नुम में जाने का जो फैसला किया जाएगा उनके लिए वो उनके कुफर की वजह से किया जाएगा, उनकी बुखल की वजह से नहीं किया जाएगा, या उनके किसी और गुना की वजह से नहीं किया जाएगा, ठीक है, बखिलाफ गुनाहगार मोमिनीन के उनको मासी पर नफ्से अजाब भी हो सकता है। अब मैंने जो अब तक आपको ये बात समझाई है कि काफिर के ऊपर जो जहन्नुम का फैसला किया जाएगा वो उनके कुफर की वजह से किया जाएगा, लेकिन जब एक दफा वो जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे तब जहन्नुम के अंदर जो अजाब की शिद्दतें होंगी ना, कम शिद्दत, ज्यादा शिद्दत, बहुत ज्यादा शिद्दत, ये उनके अमल की वजह से होगी, ठीक है। अब अगर ये आपको समझ में आ गया है, ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई है, तो ये जो आखिरी जुमला है بخلاف گناہگار مومنین کے کہ ان کو معاصی پر نفس عذاب بھی ہو سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ذرا پہلے آپ خود سوچ لیں. میں ایک منٹ ایک امپورٹنٹ واٹس ایپ کا ذرا جواب دے دوں کیونکہ وہ دوسری کلاس کے متعلق ہے, ان کو ضرورت ہے کچھ ہیلپ کی. ٹھیک ہے, تو ایک منٹ کے لیے دوں. تو ایسا کچھ ہو تو امید ہے کہ آپ نے پاز کیا ہوگا ریکارڈنگ کو. ٹھیک ہے, تو گناہگار مومنین کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کو معاصی, معاصی کا مطلب گناہ, گناہ والے اعمال, تو ان پر نفس عذاب بھی ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ کہ مومنین کے لیے ان کے ایمان کی وجہ سے فیصلہ تو ہے جنت کا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو جنت میں بعد میں جانا ہے, لیکن ان کو جو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے نا, وہ کس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے؟ ایمان کی وجہ سے. تو ظاہر ہے جہنم میں نہیں ڈالا جاتا, اور کفر انہوں نے کیا نہیں, تو پھر ان کو کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ ان کو نفسے یعنی معاصی پر ڈالا جا رہا ہے جہنم میں. ٹھیک ہے, یعنی مومنین کو جہنم میں ڈالنے کی ریزن کفر نہیں ہے بلکہ گناہ کے کام ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ کافرین کو جہنم میں ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ان کے گناہ کے کام نہیں ہے بلکہ ان کا کفر ہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طریقے سے اس کے برعکس جو جنت والا معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ مومنین کو جنت میں ڈالے جانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے نیک اعمال نہیں ہیں. رائٹ, مومنین جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ نیک اعمال نہیں ہیں, بلکہ جنت کی چابی یا جنت میں ڈالے جانے کی وجہ وہ ان کا ایمان ہے. لیکن جب وہ جنت میں چلے جائیں گے اپنے ایمان کی وجہ سے, اب جنت میں ان کو کون سا والا مقام ملنا ہے, کتنے گھر ملنے ہیں, کتنے کپڑے ملنے ہیں, کتنے جو ہے وہ سواریاں ملنی ہیں, کتنے جو ہے وہ ہیرے جواہر ملنے ہیں, کتنا اچھا کھانا ملنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے نیک اعمال کی بنیاد پر ہوں. ٹھیک ہے, تو دونوں طرف ایک جیسا معاملہ ہے, جہنم کا بھی یہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اور جنت کا بھی یہی معاملہ ہے. جہنم کی چابی کفر ہے, جنت کی چابی ایمان ہے. جب ایک دفعہ جہنم میں انٹر ہو جائے گا کافر, تو جہنم میں کون سا عذاب اس کو ملنا ہے وہ اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر بڑی بڑی جو درجے ہیں جنت کے اندر وہ کیا ہیں کہ جنت کا سب سے نچلا درجہ, اس کے اوپر والا درجہ, اس کے اوپر والا درجہ, اس کے اوپر والا درجہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو جنت کے سب سے نیچے والا درجہ کس کو ملے گا؟ جس نے کون سا والا عمل کیا ہوگا. کس کافر کو جہنم کا سب سے نیچے والا درجہ ملے گا؟ کس عمل کے اوپر؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہاں, عمل کا نام کیا ہے؟ عمل کا نام ہے نفاق. نفاق, جس نے نفاق کیا ہوگا نا وہ منافقین ہوتا ہے, اس کو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ملے گا. اس کے اوپر والا درجہ وہ کس کو ملے گا؟ جس نے عام شرک کیا ہوگا. رائٹ, جو مشرکین ہیں, بت پرست جو ہوتے ہیں, ان کو ان کے اوپر والا درجہ ملے گا. ان کے اوپر کن کو درجہ ملے گا؟ یعنی مشرکین کے اوپر والا درجہ کن کو ملے گا؟ جو کہ یہ دوسری قسم کے شرک کرتے ہیں, جیسے آگ کی پرستش کر رہے ہیں, یا پتہ نہیں ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں, یا وغیرہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے مشرکین کو, پھر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, مجھے اگزیکٹلی ایکچولی یاد نہیں ہے کہ ان درجوں کی بہت اگزیکٹ تفصیل مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن اوور ایک سپرفیشل تفصیل اسی طرح سے بنتی ہے. ٹھیک ہے, سب سے نیچے منافقین, ان کے اوپر مشرکین, پھر ان کے اوپر یعنی یہود, یہودی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہودی جو ہیں انہوں نے بھی کفر کیا ہوتا ہے, لیکن وہ اہل کتاب تھے, اور ان کا جو کفر تھا وہ ایک دوسرے طریقے کا کفر تھا. ٹھیک ہے, وہ منافقین کی طرح کا نہیں تھا, وہ مشرکین مکہ کی طرح کا نہیں تھا, بلکہ ڈفرنٹ ٹائپ کا کفر تھا نا. ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ نیک اعمال بھی کرتے تھے, کچھ ان کو انبیاء کی جو ہے وہ صحبت بھی ملی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا ان کا درجہ جو ہے وہ تھوڑا اوپر ہوگا. ओके, इनके ऊपर किनका दर्जा होगा? ईसाइयों का दर्जा होगा, ठीक है, क्योंकि ईसाई जो थे इन्होंने भी शिर्क तो किया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा माना, ठीक है, लेकिन इन ईसाइयों ने वैसे वाले गुनाह नहीं किए जैसे कि यहूदियों ने किए और मुशरिकीन वाले गुनाह नहीं किए और मुनाफिकीन वाले गुनाह नहीं किए। इनके गुनाहों की जो शिद्दत है ना वो दूसरों के मुकाबले में सबसे कम है, ईसाइयों के गुनाहों की शिद्दत दूसरों के मुकाबले में सबसे कम है। कोई बता सकता है कि क्या मेजर डिफरेंस है ईसाइयों के गुनाह और यहूदियों के गुनाह में, मेजर डिफरेंस क्या है? अगर आप यहूदियों और मुशरिकीन को एक साइड पर रखें और ईसाइयों को दूसरे साइड पर रखें तो इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है जो कि कुरान इसको खोलता है, ठीक है, किसी को ये मेजर डिफरेंस पता है? गुनाह तो दोनों के हैं लेकिन इनके गुनाह की नेचर डिफरेंट है और उनके गुनाह की, यानी यहूदियों और बुतपरस्तों के गुनाह की नेचर डिफरेंट है। क्या है ये डिफरेंस? एनीवन? غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ گمراہ ہوئے، اچھا تو گمراہ باقی لوگ نہیں ہوئے، گمراہ تو سارے ہوئے، تو خالی ترجمہ کر دینے سے تو بات سمجھ میں نہیں آتی نا، ضالین کا آپ نے ترجمہ تو کر دیا لیکن میرے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ مطلب کیا ہے آپ کا، تو ترجمے سے تو بات سمجھ میں نہیں آتی نا، تفصیل کیا ہے؟ بغض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا ویسے تو عیسائیوں کو بھی بغض ہوتا ہے، لیکن جو میجر فرق ہے نا یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، یہودی زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں، عیسائی بھی پھیلاتے ہیں، ویسے میجر جو ڈفرینس ہے نا وہ ہے کہ یہودی جو تھے نا یہ تکبر کے گناہ میں مبتلا تھے، تکبر کا گناہ، ٹھیک ہے، اور عیسائی کس والے گناہ میں مبتلا تھے؟ ذرا بتائیں نا، روحانی بیماریوں کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری پوری کلاسیں ہوئی ہیں، تو روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ تکبر، اور ایک اور کیا ہوتی ہے جس میں عیسائی مبتلا تھے، وہ کون سی والی روحانی بیماری تھی؟ تکبر کی روحانی بیماری یہودیوں کے اندر تھی، اور عیسائیوں کے اندر جو غالب روحانی بیماری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ چلے ایک ہی ورڈ تھا، اگر کسی کو لکھنا ہوتا تو اب تک لکھ چکے ہوتے ہیں، تو عیسائیوں میں جو غالب روحانی بیماری ہوتی ہے وہ شہوت پرستی ہوتی ہے، شہوت پرستی، ٹھیک ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں جیسے کہ زنا والی بیماری، ٹھیک ہے، یا بہت کھانے پینے والی بیماری، ٹھیک ہے، اس کو شہوت پرستی والی بیماری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں بنیادی روحانی بیماریاں ہیں، تکبر بھی ایک بنیادی روحانی بیماری ہے اور شہوت بھی ایک روحانی بنیادی روحانی بیماری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپسند کون سی والی ہے ان دونوں کے مقابلے میں؟ زیادہ ناپسند کون سی ہے؟ تکبر، ٹھیک ہے، تو یہودی جو ہے نا یہ تکبر کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کو زیادہ سزا ملے گی، ان کا درجہ جہنم کے اندر نیچے ہوگا، اور عیسائیوں کو بھی سزا ملے گی شہوت پرستی کی وجہ سے، لیکن ان کا درجہ اوپر ہوگا یہودیوں کے مقابلے میں، کیونکہ شہوت کی روحانی بیماری تکبر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، تکبر کے مقابلے میں صرف، ٹھیک ہے، ویسے یہ کوئی اچھی نہیں اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو گویا کہ کوئی ان کو یعنی اس کے اوپر ان کو کوئی انعام مل رہا ہے، نہیں، انعام نہیں مل رہا، سزا تو ان کو بھی مل رہی ہے، لیکن ریلیٹو اسپیکنگ بات کی جاتی ہے نا، ریلیٹولی اسپیکنگ، ٹھیک ہے، تو جہنم کے اندر عذاب اس طریقے سے اعمال کی بنیاد پر ہوں گے، جس نے شہوت والے گناہ کیے ہوں گے اس کو ایک درجہ ملے گا، جس نے تکبر والے گناہ کیے ہوں گے اس کو اس کے نیچے والا درجہ ملے گا، جس نے منافقت والے گناہ کیے ہوں گے اس کو سب سے نیچے والا درجہ ملے گا، اور ایمان والے جو ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جن کو جانا پڑ جائے گا ان کو سب سے اوپر والا درجہ، ٹھیک ہے، سب سے اوپر والا درجہ ان کو ملے گا، اور اس کی بھی وجہ کیا ہوگی؟ عذاب تو ان کو بھی جہنم کا ہو رہا ہوگا لیکن دوسروں کے مقابلے میں کم ہو رہا ہوگا، اور دوسری وجہ کیا ہے कि इनको इनके ईमान की वजह से किसी ना किसी वक्त जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा। तो जो सबसे ऊपर होते हैं उन्हीं को निकालना सबसे आसान होता है ना, वरना जो अगर उनको नीचे डाल दिया जाए तो फिर निकालना एक तो मुश्किल काम तो अल्लाह ताला के लिए कोई नहीं है, लेकिन उनको निकलने के लिए फिर ऊपर वाले दर्जों से भी गुजरना पड़ेगा, राइट। नीचे से ऊपर आने के लिए तो फिर हर दर्जे को उनको क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो भाई उनको सबसे ऊपर वाले दर्जे में रख लिया कि आपको किसी दर्जे को क्रॉस ना करना पड़े निकलने के लिए, बल्कि डायरेक्ट आप वहां से बाहर निकल आए। ठीक है, अच्छा आगे लिखते हैं कि आगे दूसरे रजाइल का जिक्र है जो अजाब का सबब होते हैं, इनसे अहले ईमान का इस्तिस्ना और फिर इस्तिस्ना का नतीजा बयान है। यानी ठीक है, यानी जो दूसरे अजाब वगैरह होते हैं तो अहले ईमान को ये वाले अजाब नहीं होंगे। तो इसके बारे में बात हो रही है कि इंसान कम हिम्मत पैदा हुआ है। इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, हलुआ का तर्जुमा यहाँ पर किया कम हिम्मत। मुराद इंसान से इस्तिस्ना को शामिल करने के बाद इंसान के बाद इंसान काफिर है, इंसान काफिर यानी काफिर इंसान। यानी कि अब इंसानों में ना एक्सेप्शन बयान की जा रही है। थोड़ा सा ये जो जुमला है ये जरा समझना और समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस वजह से ना इसको मारूफ मसाइल में देख लेंगे। फिलहाल जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एज इट इज पढ़ लेते हैं कि मुराद इंसान से इस्तिस्ना को शामिल करने के बाद इंसान एक काफिर है। यानी यहाँ पर मुराद कौन है, यहाँ पर काफिर इंसान मुराद है कि वो कम हिम्मत होता है। ठीक है, वो कम हिम्मत होता है, काफिर इंसान कम हिम्मत होता है। ठीक है, तो खुलिकल इंसानो यानी खुलिका हलुआ कि उसको हमने कम हिम्मत पैदा किया। ठीक है, तो जब पैदा किया कम हिम्मत तो फिर उसकी कम हिम्मती का इल्जाम उसको तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैदा तो अल्लाह ने किया उसको, और उसकी जिबिल्लत के अंदर या उसकी फितरत के अंदर कम हिम्मती रख करके उसको पैदा किया, तो भाई उसका क्या कसूर है इसके अंदर? कसूर तो नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का हुआ ना, राइट, जिसने उसको इस तरह से पैदा किया। तो ये एक जहन में सवाल आ सकता है। ठीक है, तो अब इसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पैदा होने का ये मतलब नहीं कि अव्वल पैदाइश के वक्त से ही वो ऐसा है, बल्कि मतलब ये है कि उसकी जिबिल्लत में यानी उसकी नेचर में ऐसा मादा रखा गया है। ऐसा मादा से मुराद ऐसी कैपेबिलिटी, पोटेंशियल ऐसा रखा गया है कि वो अपने वक्त पर पहुंचकर यानी बलूग के बाद, बलूगत के बाद इन रजील सिफात का आदि हो जाएगा। ठीक है, यानी जब वो बालिग हो जाएगा ना तो फिर वो कम हिम्मती वगैरह की सिफात उसके अंदर पैदा होंगी। ठीक है, यानी जरूरी नहीं है पैदा हो, लेकिन पैदा हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है कि उनके उसके अंदर कम हिम्मती वाली सिफात पैदा हो जाएं पोटेंशियली। ठीक है, अब यहां पर एक चीज जो है लफ्ज आया है बलूग का। ठीक है, तो उसके बारे में सुन लें कि जैसा कि आपको उम्मीद है कि पता तो होगा कि जब बच्चा बालिग हो जाता है तो उसके ऊपर शरीयत के अहकाम नाफिज हो जाते हैं। ठीक है, ये बात तो उम्मीद है कि सबको इसका पता होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़े बहुत भी दीनदार हो जाते हैं तो ये बात अंदाज़ा हो जाता है इसका कि बलूगत के बाद नमाज फ़र्ज हो जाती है और रोज़ा फ़र्ज हो जाता है, ज़कात फ़र्ज हो जाती है और हज फ़र्ज हो जाता है अगर आपके पास उसके मकदार के मुताबिक माल हो। ठीक है, यहाँ तक तो अक्सर लोगों को पता होता है, लेकिन इसके बाद जो तफसीलात है ना कि भाई बलूगत होती कैसे है ये नहीं पता होता। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक एरिया है जिसको के सीखना पड़ता है। ठीक है, ख्वातीन के अंदर फिर भी इसका इल्म ज्यादा होता है। ठीक है, कि बालिग होने की क्या निशानियां होती हैं, कब बालिग हो जाते हैं, ख्वातीन के अंदर होता है। ठीक है, इतना इल्म अगर नहीं है तो जरूरी है, लाजमी है, फर्ज है कि इसको, इस इल्म को हासिल किया जाए। ठीक है, किसी उस्तानी से पूछें, किसी आलमा से पूछें। ठीक है, लेकिन दूसरी बात जो ज्यादा अहम है यहाँ पे बतानी है, तो ख्वातीन की क्लास, लेकिन बात जो बहुत अहम है वो ये बतानी है कि अगर आपको इस बात का इल्म है ना, तो ये मत समझिएगा कि आपके शौहर को भी इस बात का इल्म है। ठीक है, इसलिए कि मर्दों के अंदर ये नॉलेज और भी ज्यादा कम होती है, बल्कि समझ लें, एक्सपेक्ट करें कि नहीं होती है, उनको नहीं पता होता। ठीक है, बड़े हो चुके होते हैं, कुछ पता नहीं होता। ठीक है, कब बड़े हुए, कब बाले हुए, कब जो है वो फर्ज हुआ, नमाज कब फर्ज हुई, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बातें मर्दों को नहीं पता चलती हैं। ठीक है, और ख्वातीन में तो फिर पूछने का एक सिस्टम होता है ना, मर्दों में तो उतना भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। इस वजह से घर की जिम्मेदार औरत होने के नाते ना, दो बातों का ख्याल रखें कि किसी तरीके से अपने शौहर से बात करें कि क्या उनको पता है या नहीं पता है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आपको अल्लाह ताला ने बेटा दिया है, तो उसके बारे में आपको ये फिक्र करनी पड़ेगी कि अगर वो इस उम्र को पहुंच गया है, तो क्या उसको ये मसाइल पता है कि नहीं पता है, आपके हस्बैंड उसको बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। ठीक है, अजम्पशन ना करें कि हाँ बता ही दिया होगा, नहीं, अजम्पशन ये करें नहीं बताया होगा। ये आजिज अपने तजुर्बे से भी बता रहा है। ठीक है, अपने बड़ों से भी ये बात सुनी है जिन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ डील किया ना, तो हमें पता है ये बात, तकरीबन 100% गारंटी के साथ पता है कि मर्दों को ना तो ये बातें पता होती हैं, ना उनको उसकी तरफ तवज्जो होती है। ठीक है, उनको खुद अपनी फिक्र नहीं होती। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया भी बस ऐसे ही है। आपको पता ही है कि आप लोगों को कितनी फिक्र होती है कि जी मुझे कैसे लोग देख रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रही हूँ, कैसे जो है वो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, कितनी फिक्र होती है ख्वातीन को। और आपको पता है मर्दों को, अक्सर मर्दों को कोई फिक्र नहीं होती। ठीक है, वो तो किसी ने कहा ना कि अगर औरतें ना होती तो मर्द तो सारी जिंदगी एक ही कपड़े में गुजार देता। हकीकत है ये, राइट? बहुत कम मर्द होते हैं जो कि बड़े नफीस होते हैं और हर वक्त जो है उनको कपड़ा चेंज करने की फिक्र होती है, वो भी कोई इतनी अच्छी सिफत नहीं होती उनके अंदर, वो भी एक दूसरे एक्सट्रीम पे निकल जाते हैं, वो अच्छी खासी वो औरतों की तरह की फिर हरकतें शुरू कर देते हैं, वो भी सही नहीं है। ठीक है, लेकिन अक्सर मर्द जो होते हैं ना, उनको तो बिल्कुल परवाह नहीं होती, जिस तरह उनको अपने पहनने ओढ़ने की परवाह नहीं होती ना, उसी तरह उनको इन बातों की भी परवाह नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ शरीयत जहां मुतासर होनी शुरू हो जाए, वहां पर तो ये जायज ही नहीं है कि भाई इतना तो आपको पता करना आपके ऊपर फर्ज है। ठीक है, तो इस वजह से ना आपको एक नसीहत ही कर सकते हैं आज के मालूम करें, ठीक है, कि मर्दों को पता है कि नहीं पता है। और बेटे जो हैं वो अगर 9 साल का बेटा हो गया है, तो उस वक्त से जो है वो ये बातें जो है वो उसको बतानी होती हैं, और अगर आपके हस्बैंड नहीं बता रहे हैं तो आपको इंतजाम करना पड़ेगा इसका। ठीक है, या आप हस्बैंड को कायल करें, उनको पहले कायल करें कि वो खुद इल्म हासिल करें इन चीज़ों का। ठीक है, और अगर वो बिल्कुल ही जो है वो बात मानने से इनकार कर दे ना, तो फिर किसी आलिम से बात करनी पड़ेगी, किसी ऐसे यानी नेक इंसान से बात करनी पड़ेगी कि भाई वो फिर या तो आपके हस्बैंड से बात करें, या वो जो है वो आपके बेटे से डायरेक्टली बात करें। ठीक है, क्योंकि ये फराइज का मामला है, इसके अंदर कोताही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलें, तो ये फरमाते हैं कि ये वो अपने वक्त पर पहुंचकर यानी बुलूग के बाद इन रजील सिफात का आदी हो जाएगा। तो खाली बलूगत के बाद ऐसा नहीं होता कि जी नमाज फर्ज हो गई, बल्कि ये जो जबिल्लत के अंदर अल्लाह ताला ने चीज़ें रखी हैं ना, तो ये चीज़ें भी जो है ना, ये भी अगर अच्छी तरबियत ना हो, सही चीज़ें बच्चे को पता ना हो ना, तो बालिग होने के बाद ये चीज़ें भी पक्की हो जाती हैं इंसान के अंदर। ठीक है, अच्छाइयाँ भी पक्की हो जाती हैं अगर पहले से अच्छाइयाँ हैं उसके अंदर, और अगर पहले से बुराइयों में उसकी तरबियत हो रही है, तो बुराइयां भी उसके अंदर पक्की हो जाएंगी। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तो फरमाते हैं कि पस कम हिम्मती से मुराद तबीई कम हिम्मती नहीं है। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने कम हिम्मती जो है वो बस हमारे अंदर डाल दी है, अब तो हम जो चीज तभी तौर पर हमारे अंदर मौजूद हो अब हम उसको निकाल नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, तभी कम हिम्मती यहाँ पर मुराद नहीं है, बल्कि कम हिम्मती के आसारे जमीमा इख्तियारिया मुराद है। ठीक है, गोया के जैसे बीज होता है ना, बीज, ठीक है, तो बीज जो है वो तो यानी जैसे मिसाल के तौर पर आप गंदम का दाना, ठीक है, गंदम खरीद के लाती हैं घर में, ठीक है, तो गंदम का हर दाना एक बीज है, ठीक है, आप 1 किलो गंदम खरीद के लाई, गंदम का दाना के बाकायदा दाने खरीद के लाए 1 किलो, ठीक है, तो 1 किलो के अंदर कितने हजारों दाने होते हैं, हर दाना एक बीज है, लेकिन क्या हर दाना गंदम का पौधा बन सकता है? नहीं बन सकता, हर दाना गंदम का पौधा बनता ही नहीं है। कौन सा पौधा, कौन सा बीज गंदम का पौधा बनेगा? जिस बीज को आप मिट्टी में डालेंगी, अच्छी मिट्टी के अंदर, जरखेज मिट्टी में डालेंगी, और उसको जो है वो पानी भी डालेंगी, उसको जो है वो अच्छे यानी जो माहौल के बुरे असरात होते हैं उनसे महफूज भी रखेंगी, ठीक है, तब वो बीज पौधा बनेगा, राइट। तो बीज होने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि जी आपके घर में 1,000 पौधे मौजूद हैं, ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है, आप 1 किलो गंदम के बीज खरीद के लाइए तो क्या मतलब कि 1 किलो गंदम के पौधे खरीद करके लाइए? नहीं, गंदम के पौधे तो नहीं खरीद के लाए, आप तो बीज खरीद के लाइए ना, ठीक है, तो बीज तो पौधा सिर्फ माहौल की वजह से बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इन चीजों के बीज रखे हैं, जैसे कम हिम्मती का बीज रखा हुआ है, लेकिन ये कम हिम्मती का बीज कम हिम्मती के पौधे में कब तब्दील होगा? जब इंसान अपने इख्तियार से बुरे माहौल को अपनाता है, अपनाएगा, ठीक है, तब ये बीज जो है वो एक्चुअली कम हिम्मती के कैफियत में तब्दील होगा, अदरवाइज ये तब्दील नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं कि कम हिम्मती के आसारे जमीमा इख्तियारिया मुराद है, ठीक है, यानी इख्तियार के साथ जो हम कम हिम्मती के चीज को अडॉप्ट करते हैं ना, कम हिम्मती की बातों को, तो वो यहाँ पर मुराद है, कोई तभी कम हिम्मती मुराद नहीं है, यानी बीज मुराद नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बल्कि जब हम अपने हरकतों की वजह से उसको पौधा बना देते हैं ना, तो वो मुराद है यहाँ पर, जिनको आगे बयान फरमाते हैं, यानी जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो हद जवाज से ज्यादा जजा फजा करने लगता है, ठीक है, यानी जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो एक जायज वो होता है, यानी जुबान से कोई जायज कलमे कह सकते हैं, ठीक है, तकलीफ हो तो जरूरी नहीं है, मतलब ये नहीं शरीयत कहती कि बिल्कुल खामोश रहो, कुछ भी ना कहो, एक आंसू तुम्हारे आंख से नहीं निकलना चाहिए, ये शरीयत नहीं कहती है, आंसू निकल सकते हैं, इजाजत है आंसू निकालने की, नबी अलैहिस्सलाम के आंसू निकले थे जब आप सल्लम के बेटे की वफात हुई थी, राइट, ठीक है, तो उसी तरीके से जुबान से भी एक दो नॉर्मल अंदाज के जो कलमे हैं अल्लाह ताला की, जैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह ताला का फैसला था ऐसा हो गया, और हम क्या कर सकते हैं, हम तो कमजोर हैं, हम तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, जान दी हुई उसी की थी, हक हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, इस तरह की बातें तकलीफ के ऊपर इंसान कर सकता है, बिल्कुल खामोश रहने की डिमांड नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ करके, ठीक है, यानी इनकी तो जवाज है, इनकी तो इजाजत है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ के जजा फजा करना, ये क्या मतलब होता है कि नाशुक्री के कलिमात कहना शुरू कर देना, गुनाह के कलिमात कहना शुरू कर देना, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देना, किसी इंसान को ब्लेम करना शुरू कर देना कि तुम्हारी वजह से सारा कुछ हुआ, तुम ये ना करते तो ऐसा ना होता, तुम, राइट, या ये कि अल्लाह ताला को ब्लेम करना शुरू कर देना, क्योंकि हर वक्त हमें कोई इंसान भी तो नहीं मिलता ना ब्लेम करने के लिए, कोई ऐसे वाकयात भी हो जाते हैं कि जिनमें हम किसी इंसान को ब्लेम ठहरा ही नहीं सकते, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, राइट, तो अब किसको इल्जाम ठहराएं, अब जो है वो बंदा अल्लाह ताला को इल्जाम ठहराना शुरू कर देता है कि क्यों किया मेरे साथ अल्लाह ने ऐसा, क्यों किया, मैं मेरे साथ ही क्यों किया और क्यों किया, ठीक है, तो इन सब की इजाजत नहीं है, तो यही फरमा रहे हैं कि जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो हद जवाज से ज्यादा जजा फजा करने लगता है, ठीक है, जजा फजा का मतलब यहाँ पे एक बकौल मुहावरा इस्तेमाल हुआ है कि जुबान से बुरे कलमे कहना शुरू कर देना, वरना जजा फजा का मतलब होता है खौफ जदा हो जाना या कांपना शुरू कर देना वगैरह, ठीक है। अच्छा, और जब उसको फारिगुल बाली होती है, यानी बहुत अच्छे हालात उसके ऊपर आ जाते हैं, माल पैसा वगैरह, यानी उसमें वो उसकी तंगी खत्म हो जाती है, तो हुकूक जरूरिया से बुखल करने लगता है। जो उसके ऊपर जायज हुकूक आते हैं कि भाई अपने माल को इन इन जगहों पे खर्च करो, तो बुखल करने लगता है, ठीक है, स्ट्रिंजेंट हो जाता है वो, ठीक है। तो ये ततिम्मा हो गया मूजिबाते अजाब का जो मन अदबरा से शुरू हुए हैं। क्या मतलब इसका कि यहां तक जो है ना, वो जो काफिर को जहन्नम के अंदर अजाब होगा ना, तो उसके बारे में बात मुकम्मल हो गई। ततिम्मा का मतलब होता है मुकम्मल हो जाना, ठीक है। यहाँ पर एक शेर साजिश के जहन में आया था, बहुत पहले कहीं मशायख की किताब में पढ़ा था, कि अगर चाहें तो आप लिख लें, बहुत अच्छा शेर है। किसी शायर ने कहा, न शाखे गुल ही ऊंची है, न शाखे गुल ही ऊंची है, न दीवारे चमन बुलबुल, ठीक है। यानी शायर जो है वो बुलबुल से कह रहा है, जो कि किसी किसी बाग के अंदर, बल्कि किसी बाग के बाहर है। देखिए, बुलबुल जो है वो एक ऐसा परिंदा है जो कि बाग में रहता है, बाग में उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, ठीक है। बाग के अंदर वो चहचहाता भी है, वो एक दरख्त की टहनी से दूसरी दरख्त की टहनी के ऊपर जाकर के बैठता है, ठीक है। तो बुलबुल की जो असल जगह है रिहाइश के लिए, वो बाग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शायर जो है ना, एक ऐसे बुलबुल से मुखातिब है जो कि बाग के अंदर पहुंच नहीं पा रहा, बल्कि बाग के बाहर है, ठीक है, और वो बाग के अंदर जा नहीं सक रहा, ठीक है। तो शायर उस बुलबुल को खिताब करके कह रहा है कि ऐ बुलबुल, न शाखे गुल ही ऊंची है, यानी जिस टहनी के ऊपर फूल लगा हुआ है, तू चाहता है कि उस टहनी के ऊपर जाके बैठ जाए, उस फूल की सोबत में जाके बैठ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो शाखे गुल कोई बहुत ऊंची है तेरे लिए, तुझे तो अल्लाह ताला ने पर दिए हैं, तू तो पर से उड़ करके किसी भी फूल की शाख पर जाके बैठ सकता है, ठीक है। वो शाख तेरे लिए कोई ऊंची नहीं है। तो फरमाते हैं कि न शाखे गुल ही ऊंची है, ना दीवारे चमन बुलबुल, कि ये जो चमन है, चमन बाग को कहते हैं, तो इस बाग के गिर्द जो दीवारें हैं ना, ये भी तेरे लिए कोई ऊंची कोई थोड़ी है। तुम तो उड़ करके आराम से बाग के अंदर जा सकते हो, तो ऊंची दीवारें तुम्हें रुक थोड़ी रोक सकती हैं बाग के अंदर जाने से। बात समझ में आ रही है कि न शाखे गुल ही ऊंची है, न दीवारे चमन बुलबुल, तेरी किस्मत की कोताही, तेरी हिम्मत की पस्ती है। क्या मतलब? तेरी किस्मत की कोताही, तेरी हिम्मत की पस्ती है, कि ये जो तेरी बदकिस्मती है ना, कि तू अभी तक बाग के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी हिम्मत की पस्ती है, तेरी पस्त हिम्मती है, तू हिम्मत नहीं कर रहा कि उड़ करके बाग के अंदर पहुंच जाए। अल्लाह ताला ने तुझे सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है, तुम्हें जान दी हुई है, तुम्हें पर दिए हुए हैं उड़ने के लिए, तुम्हें परवाज करना सिखाया भी है अल्लाह ताला ने, सब कुछ तो तुम्हारे पास मौजूद है, बस तुम्हारी कम हिम्मती है कि तुम ये फ्लाइट ले नहीं रहे, तुम ये मेहनत कर नहीं रहे, ठीक है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो, अपने परों को हिला लो, फड़फड़ा लो, तो तुम आसानी के साथ उड़ करके बाग के अंदर पहुंच जाओगे, फिर उसके बाद तुम जिस फूल पे जा करके बैठना चाहोगे तुम बैठ सकोगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ भी यही होता है कि हम जो है ना, वो कहते हैं नहीं, मैं तो नेक बन ही नहीं सकता, मैं तो नेकी ये काम कर ही नहीं सकती, मैं तो गुनाहों को छोड़ ही नहीं सकती, छोड़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो भाई आप क्यों नहीं छोड़ सकते? आप अल्लाह के बंदे नहीं है? अल्लाह ताला ने आपको ईमान की दौलत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खोल करके रखा, किसी वक्त भी मेरा बंदा मुझसे तौबा कर सकता है, कोई उसके लिए तहज्जुद का वक्त जरूरी नहीं है कि भाई मैं तहज्जुद में नहीं उठ पा रहा तो मैं तौबा कैसे करूं, भाई मैं मक्का मुकरमा नहीं जा पा रहा, उमरा नहीं कर पा रहा तो मैं तौबा कैसे करूं। भाई किसने शर्त लगाई है कि मक्का मुकरमा जाकर के तौबा करनी है? अपने घर के अंदर बैठ करके, अपने कमरे के अंदर एक मुसल्ला बिछाए, या मुसल्ला भी बिछाने की जरूरत नहीं है, अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बंदा तौबा कर सकता है। भाई कितना आसान अल्लाह ताला ने कर दिया, लेकिन हम जो है ना, वो दरअसल अपनी कम हिम्मती की वजह से एक शैतान की तरफ से हमें खौफ डला हुआ होता है कि अगर हमने तौबा कर ली तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हमारी ख्वाहिशात छूट जाएंगी, हमारी जिंदगी जो है वो एक मुश्किल बन जाएगी, लोग हमें ताने देना शुरू कर देंगे, और हम लोगों को फेस कैसे करेंगे अगर हमने गुनाह छोड़ दिया, बेपर्दगी छोड़ दी। ख्वातीन के लिए सबसे बड़ा मसला होता है बेपर्दगी छोड़ना, तो हमारे दोस्त हैं और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमें ताना देंगे कि ये तो मौलविया बन गई है, ये तो यानी क्या मखलूक बन गई है, इसको क्या हो गया है, दिमाग खराब हो गया है इसका, राइट। हमारी दोस्तियां जो पुरानी दोस्तियां लगी हुई हैं स्कूल कॉलेज की दोस्तियां, वो दोस्त हमसे टूट जाएंगे, राइट। ये सारे के सारे एहसासात जो हैं ये शैतान हमारे अंदर डालता रहता है, जिसकी वजह से जो है ना वो हम तौबा ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम हिम्मत करके तौबा कर लें, अल्लाह ताला से रुजू कर लें, माफी मांग लें अपने गुनाहों की, जो भी गुनाह कर रहे हैं, जिस किस्म के भी गुनाह कर रहे हैं, नमाज छोड़ने का गुनाह हो, बेपर्दगी का गुनाह हो, किसी गैर के साथ जो है वो जो चीजें अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं, बातें करना, उसकी तस्वीरें देखना, उससे जो है वो राजो नियाज करना, जो कुछ भी जो कोई भी कर रहा है, सारे के सारे गुनाह हर किस्म के, जाहिरी हो या बातनी हो, राइट। दिल के अंदर किसी के खिलाफ कीना बोझ रखा हुआ है, राइट, किसी को जो है वो उसके खिलाफ हसद के जज्बात अपने अंदर पाले हुए हैं, ये सारे के सारे गुनाह है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वज़रो ज़ाहिर अल इस्म व बातिना, छोड़ दो वो गुनाह जो तुम जाहिर में करते हो और जो तुम छुपे हुए करते हो, यानी अपने दिल में करते हो, ठीक है। इन तमाम गुनाहों से हम तौबा कर लें और फिर अल्लाह ताला से मदद मांग लें कि ए अल्लाह मैंने तौबा कर ली, अब गुनाहों से बचना ये मेरे मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपके लिए तो आसान है ना, मुझे बचा देना, तो आप मुझे गुनाहों से बचा दीजिए। इस तरीके से बंदा अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पेश कर दे, फिर देखे अल्लाह ताला कैसे करते हैं उसके साथ। लेकिन इखलास के साथ तौबा करना ये उस परवाज की मानिंद है जो कि उस बुलबुल ने लेनी है। अगर वो बुलबुल ये परवाज ले लेना तो फिर सारा काम आसान हो जाएगा, अल्लाह ताला ने उसको सारी सलाहियतें दी हुई हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला हमारे सारे मरहले जो है वो आसान कर देगा, हमारा सिर्फ काम यह है कि हम तौबा की फ्लाइट ले लें, तौबा की परवाज उड़ जाए, ठीक है। और उसके लिए जाहिर है इसके लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कम हिम्मती से काम नहीं चलता, बल्कि थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, और अल्लाह ताला की रजा की खातिर और जन्नत की जजा की खातिर जो है ना इन चीज़ों को यानी इस स्टेप को लेना पड़ता है। जो ये स्टेप ले लेता है आगे उसके लिए मामलात अल्लाह ताला आसान फरमा देते हैं, ठीक है। तो ये मसला है जिसके अंदर हम जाती तौर पर भी मुब्तला हैं, ठीक है ना, और हमारी औलादें जो हैं वो और भी ज़्यादा मुब्तला हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी औलादों की ऐसी जहन साजी नहीं करी हुई है, ऐसे उनके ईमान के ऊपर मेहनत नहीं करी हुई है कि वो दुनिया का मुकाबला कर सकें, ठीक है, वो ईमान के ऊपर डट सकें, वो हौसले के साथ जो है ना वो जो दुनियादार और गुनाहगार लोग हैं वो उनके सामने दीन पे अमल कर सकें, हमने ऐसी तरबियत नहीं करी है अपनी औलादों की, ठीक है। तो अब इस तरबियत के बगैर हमने अपनी औलादों को स्कूलों में दाखिल करा दिया है, और जो बड़ी हुई हैं उनको कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के अंदर भेज दिया है, अब उनकी ईमान तो बना ही नहीं है ना। अब स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो माहौल है वो तो शिद्दते गुनाह का माहौल है, बहुत गुनाह का, ठीक है। यानी जाहिर है लड़के लड़कियां मिक्स मिक्स होते हैं अक्सर जगहों पर, तो अब इन लड़कियों के साथ जो हमारे बेटे पढ़ते हैं जा करके, या हमारी बेटियां जो हैं जब लड़कों के साथ जाके पढ़ती हैं, तो आपको पता है अगर आप भी इस माहौल से गुजरी हैं तो आपको अंदाजा होगा कि उस वक्त फिर अपने आप को गुनाह से बचाना, गुनाह के ख्यालात से बचाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। किसी का ईमान अगर नहीं बना हुआ हो पहले से, जैसे कि हम में से किसी की औलाद का यकीनन नहीं बना हुआ है, हमें जाती वास्ता पड़ता है ना ऐसे बच्चों से, ठीक है, तो हमें अंदाजा है कि नहीं बना हुआ किसी का ईमान, उनके माँ बाप बस बातें करने की हद तक जो है वो दीनदार थे, उससे ज्यादा दीनदारी नहीं आई है घर के अंदर, ठीक है, उनको अंदाजा ही नहीं है कि उनकी औलादें क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारी औलादें भी जो है ना वो शदीद कम हिम्मती का शिकार है, शदीद कम हिम्मती का शिकार है, ठीक है। तो अब उनके लिए अपने ईमान को बचाना, अल्लाह की खातिर जो है वो गुनाह से अपने आप को रोकना, ये बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो अब अगर हमसे ये गलतियां हो चुकी हैं, हमने अपने औलादों का ईमान बनाने के ऊपर मेहनत नहीं करी है, तो कम से कम इस गुनाह से हम आज तौबा कर लें, हाँ अल्लाह ताला मुझसे ये गुनाह हो गया, मैंने अपने औलाद की ईमानी तरबियत नहीं करी, ठीक है, ये भी एक गुनाह है, इससे भी अल्लाह ताला से तौबा करनी है, और फिर अपनी औलाद के लिए बहुत दुआ करें, बहुत दुआ करें, राइट, रो रो करके अल्लाह ताला से दुआ करें। जैसे औलाद को अगर 106 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 106 डिग्री, राइट, तो माँ बाप को नजर आ रहा होता है ना कि बस ये तो लगता है अब नहीं बचेगी, ये मेरा बच्चा नहीं बचेगा। 106 डिग्री टेम्परेचर कोई मामूली टेम्परेचर होता है, उसकी जान की फिक्र हो जाती है ना, कैसे दुआएं करती हैं उस वक्त। बिल्कुल इसी तरीके से अपने औलाद के लिए दुआ करें कि मेरा बच्चा जो है वो 106 डिग्री की गुनाह के टेम्परेचर का शिकार हुआ हुआ है इस वक्त, ठीक है। और उस वक्त अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा करके जैसे दुआ करती है ना, उसी तरीके से इस वक्त जो है अपने औलाद के लिए गिड़गिड़ा करके दुआ करें अल्लाह ताला से कि ए अल्लाह आप बचा दें, मेरी गलतियों की वजह से मेरी औलाद को गुमराही के रास्ते पर मत डालें, बल्कि उसको उसको बचा लें, उसको किसी तरीके से बचा लें, ठीक है। वो अगर रूहानी मौत मर गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम का शिकार हो जाएगा, रूहानी मौत अगर मर गया। या हो सकता है अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हुआ, कितनी औलादें तो ऑलरेडी रूहानी मौत मर चुकी हैं, माँ बाप को नहीं पता होता, अक्सर नहीं पता होता, ठीक है, रूहानी मौत मर चुकी होती हैं औलादें, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं होता ना, हम तो पता नहीं किस ख्वाबो ख्याल के अंदर रह रहे होते हैं, राइट। तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं ना, अपनी गलतियों के ऊपर तौबा तो कर सकते हैं ना, उससे किसने रोका है आपको। तो तौबा करें उनसे, उनके लिए खूब दुआएं करें, और फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि भाई कुछ असबाब के दर्जे में मेहनत भी करें, कुछ करें उनके लिए, कुछ उनसे बात करें, कुछ अपने मशाइख से बात करें कि जी क्या करूं मैं अपनी औलाद का, कैसे मैं उसको जो है वो नेकी के रास्ते के ऊपर डालने की कोशिश कर सकती हूँ। देखिए माँ को अल्लाह ताला ने जो है ना इतना इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि वो कुछ भी कर सकती है। हकीकत यह है कि हमारे यहाँ माओं को अंदाजा ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनको कितनी ताकत दी है, अल्लाह ताला ने उनको क्या यानी क्या दिया दे करके इस दुनिया में भेजा है, राइट। लेकिन माओं को अगर सिर्फ इतना आ जाए ना कि उनके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ताकतें हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी काफी हो जाए औलाद की निजात के लिए। लेकिन हमारे यहाँ माओं को बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बहुत कम है या तो अंदाजा या बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो इसको ना, इसके ऊपर फिक्र करने की जरूरत है, इन चीजों को जरा सोचें, गौर करें और अपनी औलादों की फिक्र करें कि आपकी औलादें जो यूनिवर्सिटी जा रही है ना, ये कोई महफूज माहौल में नहीं जा रही है, ठीक है। आपके सामने वो बेशक नमाजें पढ़ती होंगी, ठीक है ना, आपको खुश करने की वजह से, या ये कि आपको आपने जो उनको एक आदत डाली हुई है तो वो आदतन नमाजें पढ़ लेती होंगी, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी में उनके दिल पर क्या गुजरती है, वो क्या सोचें उनके जहन के अंदर चल रही हैं, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है इस बात का, ठीक है। उम्मीद है कि कुछ बात समझ में आई होगी। अल्लाह ताला की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोग इंशाल्लाह हदीस की किताब थोड़ी देर में, हदीस की क्लास थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, फिलहाल आप रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए और जरा सा ब्रेक ले लीजिए।